हाँ जी
वो आत्मा मन चिंतन चलता उसी स्टेज में आ जाता है मनुष्य मरे में कभी अलग
और जो
होता है लोहे का वो रात को भी चमकता है उसको जुम्मो
हाँ
उसको लाइट और उसकी आशे आती
हाँ
जुम्मो बोलते उसको आ गया है जुम्मो
हाँ
उसको रोशनी का आशे आती हाँ वो रोशनी का आशे आती
जैसे सड़कों पर देखा होगा एक रंग लगा देते हैं वो रंग चमकता है ऐसे ही ये कीड़ा होता है जो पृथ्वी से एक प्रकार की मिट्टी उठाता है और उस मिट्टी में चमक होती है जब पर्दा उघाड़ता है उड़ते हुए तो चमकता है ये भी यादगार है। वो गंध का कीड़ा होता है परंतु जब ऊंची स्टेज में उड़ता है तो ज्ञान की लाइट मारता है। ये सारे ही मिसाल जो 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म बताया गया है वो किसके मिसाल है? है? मनुष्य कोई 84 लाख जन्म नहीं लेता है लेकिन 84 लाख योनियों जैसे कर्म करता है। तो जुगनू का भी मिसाल है और
para uno se que se sacar promovole di
¿eh?
Sacar uno se me baba sacar promovole di se sacar promovole di
¿ah?
¿Me pone que haya de nosco?
हाँ जी ब्रह्मा बाबा ने साकार शरीर छोड़ दिया और अव्यक्त शरीर धारण कर लिया।
जो मूल निधि है
चलो तारीख न बताओ ऐसे ही बता दो क्या बात है।
नहीं उसमें मूल निधि है अविश्वर ने बताया अविश्वर होना चाहिए उधर अविश्वर लिखना चाहिए ना।
हाँ बता मालूम नहीं है ना वो तो ये समझते हैं कि गुलजार दादी में भगवान आता है। अगर ये न समझें और दूसरों को न समझाएं तो उनका धंधा ही चौपट हो जाएगा क्योंकि भगवान से लेना देना है सारी दुनिया को सारी दुनिया व्यक्तियों को नहीं मानेगी। ब्रह्मा को तो भगवान मानेगी ही नहीं जबकि साबित ये होता है कि ब्रह्मा की ही सोल साकार शरीर त्याग करके अव्यक्त शरीर धारण करती है और उस अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश होकर के वाणी चलाती है। इसलिए अव्यक्त वाणी कहना चाहिए लेकिन अज्ञानता के कारण जो भक्त लोग हैं वो भगवान की वाणी में और मनुष्यों की वाणी में अंतर नहीं कर पाते हैं मनुष्यों को ही भगवान कहने लग पड़ते हैं। शुरुआत कहां से होती है कौन से मनुष्य से शुरुआत होती है? हैं? ब्रह्मा से ही शुरुआत होती है तो पहला मनुष्य गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। और मानते भी हैं कि गीता का साकार भगवान अगर दुनिया में कोई होता है तो दादा लेखराज ब्रह्मा के अलावा कोई होता ही नहीं है।
अभी
सच्ची सेवा चल रही है, अफ्रीका में सच्ची सेवा चल रही है। हाँ जी, आगे बाबा का सच्चा परिचय नहीं है। बाबा का सच्चा परिचय भले न हो, लेकिन जितना भी उन्होंने सुना है उस सुने हुए ज्ञान को वो प्योरिटी के आधार पर समझाए रहे हैं या इम्प्योरिटी के आधार पर समझाने वाले हैं? प्योरिटी के आधार पर समझाने वाले हैं। इसलिए जो अच्छी चीज होती है उसको अच्छा पात्र चाहिए, समझाने वाला भी अच्छा चाहिए, नहीं तो रावण का ज्ञान हो जाता है। क्या क्या रावण का ज्ञान हो जाता है? सुनते हैं सुनाते हैं, लेकिन जो सुनते हैं सुनाते हैं उसका तंत्र पवित्र बनो और योगी बनो ये जीवन में धारणा दिखाई नहीं देती है। बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, मन चंचल बना रहता है, मन बुद्धि मिट्टी में लगी रहती है, देह देह के संबंधियों देह के पदार्थों में रमण करती रहती है। तो सच्चा ज्ञान होगा या झूठा ज्ञान होगा? झूठा हो जाएगा।
जो भी मरे काशी में मरेंगे,
हाँ, भक्ति मार्ग में ये गायन है, जो काशी में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। क्या? काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सारी दुनिया तो नरक है, तो नरक में मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। सवाल पैदा होता है, अभी सारी दुनिया में नरक है या स्वर्ग है? नरक है, क्योंकि नरक ही बनाई हुई दुनिया है। चाहे इस्लामी संगठन है, चाहे मुसलमानों का संगठन है, चाहे क्रिश्चियंस का संगठन है, चाहे बौद्धियों का संगठन है, जो भी दुनियाएं हैं मनुष्यों की बनाई हुई, वो नरक का बनाया हुआ संगठन है। तो क्या बनाएगा? नरक ही बनाएगा। और काशी नगरी ये किसका बनाया हुआ संगठन है? है भगवान बाप का बनाया हुआ संगठन है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की सौगात बनाई होगी ऐसा संगठन, तब दी होगी कि बिना बनाए दी होगी? बनाई है। अब रही मरने की बात, उस संगठन में जो जावेंगे उनके लिए ये शर्त है कि बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर देना है। आना जाना बंद। क्या ऐसे नहीं मम्मी पप्पा बुला रहे हैं या मम्मी पप्पा की याद आ रही है? नष्टो मोहा बनना पड़े। باہر کی دنیا بھول جائے. جب باہر کی دنیا کا سنگ کا رنگ ہی نہیں لگے گا تو کون یاد آئے گا؟ ایک باپ ہی یاد آئے گا. جیسے کراچی میں مرلی میں بتایا کہ باہر کی دنیا والوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے. تو جب دیکھتے ہی نہیں تھے, ایک باپ کو ہی دیکھتے تھے, تو کون یاد آئے گا؟ ایک باپ ہی یاد آئے گا. تو کاشی میں مرنا ارتھات دیہ کے سمبندھوں سے مر جانا اور دیہ کے پدارتھوں سے بھی مر جانا, کیونکہ باہر کی دنیا میں رہیں گے تو اما باپ کچھ نہ کچھ لڈو پیڑا بھیجتے رہتے ہیں. بچی کو ساڑی بھیج رہے ہیں, بلاؤز بھیج رہے ہیں, پیار دکھاتے رہتے ہیں. اصلیت نہیں جانتے ہیں بچے کہ جن بچوں کو ارپن کیا ہوا ہے یگ میں, ان بچوں کا حق ہے ماں باپ کی سمپتی کے پارٹنر ہیں. تھوڑے تھوڑے سے بلاؤز کپڑے دیتے رہیں گے, صابن دیتے رہیں گے, ٹوتھ برش دے دیں گے. تو بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم کو بہت پیار کرتے ہیں. اب کاشی نگری میں جاویں گے تو کنیکشن ہی کٹ ہے, تو دیہ کے پدارتھ بھی باہر کی دنیا کے کٹ ہو جاتے ہیں. ایشوریہ پریوار میں جو سب کو ملے گا وہ ان کو ملے گا. تو دیہ کے سمبندھوں سے مرنا, دیہ کے پدارتھوں سے مرنا, ارتھات جو کاشی میں جا کر کے مرتے ہیں وہ ہی کہاں جاتے ہیں؟ وہ ہی سورگ میں جاتے ہیں. باپ کی تو اس نرک کی دنیا میں آگ لگے گی اور ببر 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 لگے گی آگ اور خلاص ہو جائیں گے. ارے رام کے چار بھائی تھے رام سہت, تو ان چار بھائیوں میں دو تو ودھرمی ہیں, ودیشی ہیں پکے, جیسے کہ پکے راون سمپردائے ہیں. ان کی بات تو چھوڑ دو, باقی ایک بھارتی ہے بودھی دھرم کا بیج, تو وہی لکشمن ہوا. لیکن وہ بھی مایا کی چپیٹ میں آ جاتا ہے, اس کو بھی مایا دھراشائی کر دیتی ہے. جب وہ مایا دھراشائی کرتی ہے تو ہنومان مثل جو پرشارتھ کرتے ہیں اونچی اسٹیج میں اڑنے کا, وہ اونچی اسٹیج میں اڑ کر کے پہاڑ پر پہنچتے ہیں, اونچی اسٹیج میں, اور اونچی اسٹیج میں ان کو منن چنتن منتھن کر کے نئے نئے گیان کے پوائنٹس, جسے سنجیونی بوٹی کہا جاتا ہے, مل جاتے ہیں. तो ये सब गायन है वर्तमान ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया के।
हनुमान
को बच्चा नहीं दिखाया गया, दास के रूप में दिखाया गया है।
वो खांसी जन्म गया था, वो उसका पसीना
है
क्या है? हनुमान जो होता है ना तो आकाश में उड़ान खड़ा था, वो लोग पसीना निकलता है ना, वो ऐसा कहते हैं उन्होंने समुद्र से मगन ने की लिया बोले, और उसको मगन जन्म लिया बोले, इसका के साथ गया।
बाबा ने बोला शास्त्रों में आटे में नमक मिसल सच्चाई है, जो सच्ची बात है वो शास्त्रों की मैं बताता हूँ, तो तुम टीवी देख देख करके ये सारा माथा खराब करते रहोगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए मुरली में जो बाबा ने भक्ति मार्ग की बातें उठाई है और उन भक्ति मार्ग की बातों की तरफ इशारा दिया है, उन पर मनन चिंतन मंथन चलना चाहिए, अथवा जो क्लैरिफिकेशन दिए हैं उन क्लैरिफिकेशन में समझाने में जो जो भक्ति मार्ग की बातें उठाई गई है उनमें इशारे दिए गए हैं उन पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाकी तो बता दिया कि माया रूपी मगरमच्छ है, मुरली में भले बताया है कि तुम बच्चे रामायण भागवत महाभारत इन ग्रंथों से जो भी कथा कहानियां आई हैं उस ज्ञान को टैली कर सकते हो, ये नहीं कहा टैली करो। कोई विद्वता निकालना चाहे अपनी ये टैली करता रहे, कम से कम पाप कर्मों से तो बचा रहेगा, बाकी तो याद में ज्यादा फायदा है, या शास्त्र में जो बातें आई हैं उन सारी बातों को ब्राह्मणों की दुनिया से टैली करते रहने में ज्यादा फायदा है, याद में ज्यादा फायदा है। और
बाबा गुप्ता बीवी में ना ऐसे चंदन की बारिश होती है, और धोखा पड़ता ना वैसी बारिश होती है, 14 के दिन ही होती है, क्यों है गुप्ता बीवी?
कहाँ पर है गुप्ता बीवी?
अमरावती के पास में आता,
अमरावती के पास में
भरतवाड़ा,
भरतवाड़ा के पास मुक्तागिरी है,
वो पहाड़ ऊपर केसर की बरसात होती है तो वो धुका नहीं पड़ता क्या? वैसी पड़ती
है, कोहरा पड़ता है,
वैसा पड़ता
है, तो कोहरे की तरह सावन महीने में धीमी धीमी बरसात होती है,
यहाँ है ना 14 के दिन
अच्छा।
गिरी कहते हैं पहाड़ को, पहाड़ अर्थात ऊंची स्टेज, जब ऊंची स्टेज में जाते हैं तो मन बुद्धि में ज्ञान टपकता है या नहीं टपकता है? है जो ज्ञान टपकता है वो हमको इस बंधन की दुनिया से मुक्त कर देता है, इसलिए उसको मुक्तागिरी के रूप में दिखाई दिया। बाकी कोई स्थूल पर्वत की बात नहीं है, और 14 के दिन जो दिखाया है वो है महाशिवरात्रि की यादगार। महाशिवरात्रि कब होती है? महाशिवरात्रि जो यादगार दिखाई गई है वो अमावस्या को नहीं होती है, अमावस्या से एक दो दिन पहले होती है। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक दिन का फर्क है, कहीं चौदस को और कहीं त्रयोदशी को दिखाते हैं। और
आतंक को खुदा मत कहो, आतंक खुदा नहीं है, लेकिन मनुष्य आतंक खुदा नहीं है। कहा था अभी आतंक खुदा नहीं ऐसा मूल्य में आया
है,
लेकिन जब जो बाबा की माती ने बच्चे बनते
हैं
उनके लिए तो आतंक खुदा होगा।
अरे खुदा का मतलब है जो खुद आए, बुलाने पर ना आए। तो एक है सुप्रीम सोल शिव, वो खुद आता है। 63 जन्म बुलाते रहे तो नहीं आता है, और जिसमें आता है वो क्या खुद आता है? जब उसमें प्रवेश होता है तब हमें पता चलता है। तो इससे साबित हुआ कि जिसमें प्रवेश करता है वो कोई खुदा नहीं है, वो खुद अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, उसको प्रत्यक्ष करने वाला कौन है? है शिव भगवान है। इसलिए उन्होंने फिकरा बनाई दिया, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माने 84 जन्म भल लेती है मनुष्य आत्मा, उनमें जो हीरो पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी आत्मा शिव बाप की गहरी याद में रहने के कारण, परसेंटेज में ज्यादा से ज्यादा याद में रहने के कारण अंतिम जन्म तक भी अपनी आत्मिक स्टेज को खोती नहीं है। इसलिए अंतिम जन्म में भी वो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं विष्णु स्वरूप होकर के रहती है, उनके संस्कार आपस में टकराते नहीं है। आदि में विष्णु, सृष्टि के आदि में संपन्न रूप का नाम क्या है? है लक्ष्मी नारायण माना विष्णु, जो आदि में तो अंत में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन वो कोई खुदा नहीं है। लेकिन नूर तो रहा ना उसमें अंतिम जन्म तक, वो आत्मिक स्टेज का नूर जो है वो साबित करता है कि भल खुदा नहीं है, लेकिन वो रोशनी कुछ न कुछ देवी देवता सनातन धर्म की भल प्रायः लोप हो जाती है, परंतु फिर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई मनुष्य आत्मा में रहती जरूर है, वो है अष्टदेव। सीट कहा जाता है कुर्सी को, कुर्सी पर जो बैठने वाले होंगे वो साकार होना चाहिए, सूक्ष्म शरीरधारी आकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? तो साबित हो जाता है कि जो तीन सीटें हैं, जो 33 करोड़ देवताओं के बीच में सर्वोपरि मानी जाती है, माने 33 करोड़ देवताओं को तीन ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप भारतीय संप्रदाय में कहा जाता है शैव संप्रदाय, दूसरा ग्रुप कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय, और तीसरा ग्रुप कहा जाता है ब्रह्म समाजी। इन तीनों ग्रुप के जो मुखिया हैं उनका नाम दिया है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा एक है या अनेक है? इस माता ने पूछा उसी को जवाब दे दो। हाँ, एक ही है। ब्रह्मा के चार पांच मुख क्यों दिखाए जाते हैं? अगर एक है तो चार पांच मुख नहीं होना चाहिए है? चार पांच मुख दिखाए जाते हैं तब कहा जाता है ब्रह्मा सो विष्णु। इसका मतलब जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो ही पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो विष्णु की चार भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। उन चारों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। तो वो चार भुजाएं विष्णु की जो दिखाई गई हैं, वो चैतन्य भुजाएं हैं या जड़ भुजाओं की बात है? चैतन्य भुजाएं हैं और वो चारों ही चैतन्य भुजाएं पहले ब्रह्मा के रूप में अधूरा पार्ट बजाने वाली है। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं। तो वो चारों ही आत्माएं यज्ञ के आदि में मौजूद थे, जिनके लिए मुरली में बोला है कि वास्तव में इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको भी पढ़ाई पढ़ाने वाले, डायरेक्शन देने वाले, ध्यान में जाने वाले कोई और आत्माएं थी यज्ञ के आदि में, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। तो चार वो हो गई, मम्मा बाबा और उनको डायरेक्शन देने वाले दो और एक हो गई जगदम्बा। क्या? जगदम्बा। तो पांच आत्माएं हुई ब्रह्मा के रूप में, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम पंचानन भी है। आनन माने मुख, पांच मुख वाला। मुख है तो मुख किस बात की यादगार है? गूंगे की यादगार है क्या? काय की यादगार है? कुछ बोला होगा ना, तो बोलने की यादगार है मुख। वो चार आत्माओं ने कुछ न कुछ मुख से बोला है। उसमें ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल भी है, राम की आत्मा भी है, उन दोनों की सहयोगिनी शक्तियां भी हैं। राम की सहयोगी शक्ति सीता और कृष्ण की सहयोगी शक्ति राधा और फिर जगदम्बा भी है। जगदम्बा को बेटी कहते हैं। जगदम्बा पुत्री है ना, तो बेटी है। ब्रह्मा की बेटी का नाम है जगदम्बा। तो ये चार आत्माएं हुई, पांच आत्माएं हुई, उनमें एक आत्मा उसके लिए गायन है कि उसका मुख काट दिया गया। तो जब मुख भंजन कर दिया तो देहभान कट गया या रह गया? ब्रह्मा है तो देहभान है। ब्रह्मा मृत्युलोक में गाया जाता है। मृत्युलोक में ब्रह्मा 100 वर्ष का होने पर शरीर छोड़ता है तो अमर लोक में जन्म लेगा। तो मृत्युलोक में ब्रह्मा गाया हुआ है। वो पांचों आत्माएं यज्ञ के आदि में मृत्यु लोक में थी, मृत्यु लोक में थी तो जरूर मृत्यु होगी या नहीं होगी, पांचों की मृत्यु हुई तो वो ब्रह्मा हुए। मृत्यु होने के बाद जन्म होगा या नहीं होगा, जन्म भी होता है। ब्राह्मणों का पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो जन्म होता है फिर पुरुषार्थ करते हैं तो अमरत्व को प्राप्त करते हैं, अमर अर्थात देवता बन जाते हैं। देवताओं में मुख्य देवता है विष्णु, तो उन पांचों में जो दो आत्माएं हैं वो तो शरीर छोड़ देती है, जो शरीर ही छोड़ गई वो पुरुषार्थ की दौड़ में, जैसे कुर्सी दौड़ होती है ना, उनको कुर्सी मिलती है, कहेंगे कुर्सी लेंगे, हैं? उनका शरीर ही नहीं है तो कुर्सी पे बैठेंगे कैसे। तो बाकी रह गई तीन, वो 33 करोड़ देवताओं के बीच में जो सर्वोपरि कुर्सियां हैं उनके अधिकारी बनते हैं। एक है वैष्णवी देवी, एक है जगदम्बा और एक है बाप। इन तीन के लिए बोला है, तीन सीट्स फिक्स हो गई है, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा का अर्थ लगा लेते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा, वास्तव में दादा लेखराज ब्रह्मा को असली ब्रह्मा नहीं कहेंगे, किसे कहेंगे, जगदम्बा को असली कहेंगे। अगर जगदम्बा असली ब्रह्मा है तो ब्रह्मा सो विष्णु बनने वालों में जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, है? बनती है नहीं बनती है, इसलिए जगदम्बा फर्स्ट क्लास ब्रह्मा सो फर्स्ट क्लास विष्णु नहीं है। कौन है? नहीं, प्रजापिता आदि में जो प्रजापिता है नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, वो दूसरा जन्म लेकर के शंकर बनता है, बनता है ना। तो जो शंकर बनता है वो अकेले स्वर्ग स्थापन कर पाता है, हैं? अरे काशी नगरी तो बनाई, लेकिन काशी नगरी को आनंद कानन नाम दे दिया लेकिन स्वर्ग तो नहीं है। स्वर्ग का फाउंडेशन है लेकिन नई दुनिया स्वर्ग नहीं है, नहीं तो ये गायन नहीं होता कि काशी में मरेंगे तो स्वर्ग जावेंगे। इसका मतलब काशी स्वर्ग नहीं है, हाँ काशी में मरने की बात है। काशी एक ऐसी नगरी है सारी पृथ्वी के ऊपर जो पाताल में गर्त में नहीं जाती है, गड्ढे में नहीं जाती है, नहीं तो सारी दुनिया को हिरण्याक्ष राक्षस गड्ढे में ले जाता है, क्या पतन के गर्त में ले जाता है, लेकिन काशी नगरी छिटक के अलग हो जाती है। तो बाहरी दुनिया का वाइब्रेशन और काशी नगरी का वाइब्रेशन अंतर होगा या नहीं होगा, अंतर जरूर होता है। उसका नाम ही है काशी, क्यों नाम पड़ा काशी, क्योंकि काश्य अर्थात याद का तेज बहुत है, रेगुलर अमृत वेले की याद का पुरुषार्थ पक्का रहता है। किसी और मिनी मधुबन में कोई ने देखा हो तो बताओ, देखा है किसी ने? है? नहीं देखा। तो जब याद का पुरुषार्थ पक्का नहीं है तो काश्य अर्थात याद का तेज भी नहीं है। और तीन देवताएं जो बताए गए हैं, उन तीन देवताओं में काशी नहीं है। उन तीन देवताओं में यज्ञ के आदि की वही आत्माएं हैं जो आदि में थी और दोबारा जन्म लेकर के अभी भी पुरुषार्थ कर रही है, जिनसे एडवांस ज्ञान की तीन पार्टियां बनती हैं। एडवांस पार्टी में कितने ग्रुप हैं? तीन ग्रुप हैं। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, उमंग उत्साह बढ़ाने वालों की पार्टी, अर्थात जो ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं शरीर छोड़ गई है, वो शरीर छोड़ करके जाने वाली आत्माएं जब कोई में प्रवेश करती हैं और एडवांस ज्ञान सुनती हैं तो खूब उमंग उत्साह बढ़ाती हैं, ईश्वरीय सेवा में लगाने का पुरुषार्थ कराती हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे तो तमो प्रधान हो गए हैं, तमो प्रधान बच्चे ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकते। कौन करते हैं सेवा? बाप दादा सेवा करते हैं। तो मम्मा बाबा की आत्माएं अभी भी बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय सेवा का कार्य कर रही है, वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी, भले उनको शरीर नहीं है। वो दोनों आत्माएं खास प्रवेश करके एक तो जगदम्बा में प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा की सोल, इसलिए जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, और दूसरी है सरस्वती। वो सरस्वती है छोटी माँ या बड़ी माँ? छोटी माँ। तो वो विजयमाला की जो हेड बनने वाली है उसमें प्रवेश करती है, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल पार्टी। ब्रह्मा बाबा में ज्यादा प्योरिटी थी या मम्मा में ज्यादा प्योरिटी थी? मम्मा में ज्यादा प्योरिटी थी, क्योंकि पुरुषों को तो सबको बाबा ने कंडम कर दिया, सब पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, उसमें ब्रह्मा और शंकर आ गए कि नहीं आ गए? वो भी आ गए, इसलिए खत्म। तो छोटी मम्मा माने ओम राधे, वो प्रवेश करती है इसमें वैष्णवी शक्ति में, वो विष्णु देवता के रूप में कहा जाता है। तो तीन आत्माएं हैं जो इस समय शरीरधारी हैं, एक है राम की आत्मा, एक है जगदम्बा की आत्मा शरीर सहित है, और फिर तीसरी है वैष्णवी देवी। इन तीन के लिए बोला है, तीन सीट फिक्स हुई है। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो ब्रह्मा कहने से कौन याद आता है? है
साधन एक राज, अगर याद आ गए वो तो है ही नहीं कुर्सी पे बैठने वाले।
आपको
कौन याद आता है जब बाबा ने बोला कि तीन सीट्स फिक्स हुई है, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा? तो ब्रह्मा कहने से आपको कौन याद आता है? जगदम्बा याद आती है। फिर जगदम्बा दोबारा नाम क्यों लिया? बाबा ने तो नाम ही दोबारा ले दिया। तीन सीट्स फिक्स हुई हैं, ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, तो जगदम्बा तो अलग कर दी। दो दो बार जगदम्बा की सीट कैसे हो जाएगी? तो ब्रह्मा किसके लिए बोला है? अब्बल लंबर ब्रह्मा कौन हुआ? वैष्णवी देवी, जो ब्रह्मा सो पहले विष्णु बने। क्यों बने? प्योरिटी की पावर के आधार पर। नाम ही है विष्णु, नो विष एटाल, जन्म जन्मांतर, विषयी वासना का नाम निशान नहीं होता। विचारणी कभी बनती ही नहीं। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। माने 84 जन्मों में भी पति पत्नी के रूप में अगर संबंध होगा, चाहे श्रेष्ठ इंद्रियों के रूप में चाहे भ्रष्ट इंद्रियों के रूप में, लेकिन एक आत्मा के साथ होगा, दूसरी आत्मा के साथ संबंध तो विष्णु हुआ कि नहीं हुआ? नो विषयटल, सारे चक्र में विषय विकार नहीं। इसलिए अव्वल नंबर ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु। तो तीन सीट्स में कौन कौन है पता लग गया? लग गया। और प्रश्न आया है, देवताओं के, देवी देवताओं के कदम में पदम क्यों दिखाते हैं? क्या हर कदम में पदम? बाबा की तो बेहद की भाषा है या हद की भाषा है? तो स्थूल पांव की बात है या बुद्ध रूपी पांव की बात है? बुद्ध रूपी पांव की बात है कि जीवन में, ब्राह्मण जीवन में कोई कार्य करने के लिए जरूर ईश्वरीय सेवा का ही कार्य होगा। कोई भी कार्य करने के लिए जो भी कदम बढ़ाएंगे, उस बुद्ध रूपी कदम में क्या होगा? पदम होगा। पदम माने कमल का फूल। माना उस कर्म में आसक्त होने का नाम निशान नहीं होता है। अगर बुद्धि स्वार्थ में आसक्त हो गई तो उसको कदम में पदम नहीं कहेंगे। बाबा बहुत दुखी हो गए, ज्ञान में आने के बाद बीमारी क्यों आती है? अरे दो हैं परीक्षाएं लेने वाले परीक्षक, एक है माया और दूसरी है प्रकृति। तो ये शरीर प्रकृति के पांच तत्वों का बना हुआ है और ये 84 के चक्र का अंतिम चोला है, अंतिम जन्म का। तो 63 जन्म जो पाप किए हैं, उन पापों का जन्म बाई जन्म जो रोलिंग होता आया है, वो कौन से जन्म में जाके गिरेगा? आखिरी जन्म में जाके गिरता है। तो इस आखिरी जन्म में जो शरीर के पांच प्रकृति के तत्व हैं, वो भी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेना माने बीमारियां आती जरूर है। इसलिए बोला है कि तुम्हारे शरीर सड़ते जावेंगे और सड़े हुए शरीरों से भी तुम ईश्वरीय सेवा का काम लेते जावेंगे। बूढ़ियों के लिए बोला है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको सेवा के पंख लग जावेंगे। जैसे परियां उड़ती हैं ऐसे ज्ञान योग के पंखों से उड़ती रहेंगी। तो बीमारी क्यों आती है? पूर्व जन्म के जो शरीर के द्वारा हमने पाप कर्म किए वो पाप कर्म भस्म करने के लिए सहज सहज बीमारियों से सहज सहज पाप कर्म खत्म होते हैं या धर्मराज की सजाओं से खत्म होंगे? धर्मराज की सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, सहन करना भी मुश्किल हो जाएगा। हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, चमड़ी उधेर दूंगा, कितनी कठोर भाषा बोलते हैं। आजकल तो ढेर सारी दवाइयां निकली हुई हैं। निकली हैं कि नहीं? गोली खाओ दर्द खत्म, ऑपरेशन होने जा रहा है इंजेक्शन लगाया सुन्न पड़ गया, काट पीट के सारा अलग कर दिया, टांके लगाए ज्यो का त्यों रख दिया, फिर गोलियां खाते रहो, कोई तकलीफ हुई? तो धर्मराज की सजाएं आसमान का दुख है और ये तो कुछ भी नहीं है शरीर की बीमारियां, इनसे सहज सहज हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं। फिर जितनी बीमारियां आए आती रहे, आ जाओ। और कहते हैं बाबा कर्जा हो जाता है, बाल बच्चों की परिवार की पालना करने में कर्जा हो जाता है, कभी काम चलता है कभी काम नहीं चलता है, तो जब काम नहीं चलता है तो बच्चों की परवरिश के लिए कर्जा लेना पड़ता है। बात तो सही है, धंधा धोरी कभी चलता है और कभी नहीं चलता है। ये झूठों की दुनिया है, झूठों की दुनिया में जो झूठा धंधा करते हैं वो तो लखपति करोड़पति अरबपति बनते रहते हैं, और जो सच्चाई से धंधा करते हैं वो तो घाटे में आ जाते हैं। अब घाटे में आ गए, जितनी पूंजी लगाई थी वो सब चौपट हो गई, तो बाल बच्चों का पोषण कहां से करें? कर्जा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। अब बाबा ने मुरली में क्या बोल दिया है? कर्जे के बारे में बाबा ने क्या बोल दिया है? कर्ज मर्ज है, मर्ज माने बीमारी। जैसे बीमारी अगर इलाज न कराएंगे तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, ऐसे ही कर्जा है, कर्जा मर्ज की तरह बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करें? ऐसी परिस्थिति में सवाल किया, क्या करें? अब बाबा ने तो बता दिया। क्या बताया? नहीं बता दिया बाबा ने क्या करें इसका जवाब नहीं दे दिया? दे दिया कि नहीं दे दिया? नहीं दे दिया? दे दिया। क्या दे दिया? है सब धंधों में है नुकसान, सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। ईश्वरीय धंधे में कर्जा लेना पड़ रहा है क्या? ब्रह्मा बाबा को कर्जा लेना पड़ा क्या? सालों साल पड़े पड़े जंगल में चार बरातों को भोजन खिलाते रहे, कर्जा लेना पड़ा क्या? कर्जा नहीं लेना पड़ा, और एडवांस में भी 82 से लेकर 92, 92 से लेकर 2002 कितने साल हुए? 20 साल। और अभी 2009 कितने हुए है? 26-27 साल हो गए। कर्जा लेना पड़ता है क्या? अरे मांगना, कर्जा मांगना ये भी तो मांगना हुआ ना। तो बाबा भीख मांग करके यज्ञ चला रहे हैं क्या? वो तथाकथित ब्राह्मण भल भीख मांगते हो, लेकिन ना बाबा को भीख मांगने की दरकार है और ना बाबा के बच्चों को भीख मांगने की दरकार है। सिर्फ शर्त ये है कि ईश्वरीय सेवा में लगे रहे, फिर सेवका भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। चाहे अकाल पड़े, चाहे दुनिया में दुकाल पड़े, लेकिन शर्त ये रखी है न बहुत अच्छा खाना है न बहुत खराब खाना है, न बहुत अच्छा पहनना है न बहुत खराब पहनना, न बहुत मेलमानियां अटारियों बढ़िया मकान में रहना है और न बहुत नाले के किनारे वाली झोपड़ी में रहना है। सादा मिलेगा, उसमें घाटा होने वाला नहीं है। तो ईश्वरीय धंधे में कर्जा नहीं लेना पड़ता है। तो तरीका बता दिया क्या करें है? ईश्वरीय धंधे में लग जाओ, नहीं भी लग जाएंगे अपनी जबरदस्ती करते रहेंगे तो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि सब धंधे होंगे चौपट, नाक रगड़ के। संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। तो पोजीशन नीची हो जाएगी भगवान बाप की नजर में या ऊंची पोजीशन हो जाएगी है? नाक नीची हो जाएगी। इसलिए पहले से ही क्या करना चाहिए है? पहले से ही ईश्वरीय मोर्चा ले लेना चाहिए। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, है? अपने अपने धर्म के पूर्वज हैं। हाँ ये बताया, अष्टदेव जो हैं वो पक्के सूर्यवंशी भी हैं और वो सारी दुनिया के पूर्वज भी हैं, है? यज्ञ के आदि में पहले पहले किसने जन्म लिया है? तीन ग्रुप हैं पुरुषार्थ करने वालों के। एक हैं शैव संप्रदाय, एक हैं वैष्णव संप्रदाय और एक हैं ब्रह्म समाजी। इनमें सबसे ऊंचा ग्रुप कौन सा है? है? कौन सा है? शैव संप्रदाय। जो ज्ञान सूर्य का संप्रदाय है वो सबसे ऊंचा संप्रदाय है। तो स्थापना पहले किसकी होगी या किसकी हुई होगी है? सूर्यवंशी ही पहले रचे गए होंगे। मैं आता हूं तो मैं आकर के सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो ज्ञान सूर्य का रूप कोई हुआ या नहीं हुआ?
हुआ।
उसे ज्ञान सूर्य के आसपास चक्कर काटने वाले कितने ग्रह होते हैं? 8-9 ग्रह प्रसिद्ध हैं। उनमें नौवां जो है उसकी वैल्यू नहीं है, बाकी 8 की वैल्यू है। तो वो 8 ही अष्टदेव के रूप में गाए हुए हैं, वो 8ों ही सूर्यवंशी हैं। हाँ, वो जन्म जन्मांतर ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाली जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उसके सहयोगी बनकर रहते हैं, लेकिन अंतिम जन्म में तो माया किसी को नहीं छोड़ती। तो अंतिम जन्म में जाकर के वो उसी धर्म में गिरते हैं जिस धर्म के लोग उसको स्पेशल अपना पूर्वज मानते हैं। आया समझ में? हाँ है, बीज रूप में तो है। अरे माला से अलग है, 108 की माला रुद्र माला बीज रूप की माला है या आधार मूर्ति की है? बीज की है। और
है उदाहरण है क्या
किस बात का? क्या अष्टदेव?
ये सूरज वही गर्भ में क्या कर रहा है?
उसी धर्म में जाके आखिर 8 है ना, तो 8 नंबरवार होंगे क्या? एक जैसे होंगे? और धर्म भी नंबरवार हैं या सभी धर्म एक जैसे हैं? तो जो जिस नंबर का देवता है वो उसी नंबर के धर्म में जाकर के गिरता है, और वो धर्म वाले उसको अपना पूर्वज समझ लेते हैं। बाकी तो वो हर धर्म के पूर्वज हैं। ऐसे नहीं कि आखिरी जन्म में जिस धर्म में जाके वो आत्माएं गिरती हैं उसी के पूर्वज हैं। हाँ जी। इस जन्म में राजाई शुरू होती है। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा किसका साथ देती है? वो तो बाबा ने कहा तुम बाप दादा को अलग करेंगे वो फिर एक हो जाएंगे। तिरसठ जन्म में ही तो अलग करते हैं। बच्चे जो हैं वो बाप दादा को 21 जन्म में अलग करते हैं या 63 जन्म में अलग करते हैं? 63 जन्म में ही अलग करते हैं। हाँ, तो पूछ क्या रहे हैं? कृष्ण वाली आत्मा किस पक्ष में काम करती है? कृष्ण वाली आत्मा कृष्ण पक्ष में खास काम करती है। अरे कृष्ण वाली आत्मा होगी तो कृष्ण पक्ष में काम करेगी या सूर्य पक्ष में काम करेगी? कृष्ण पक्ष में काम करती है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इनके चार कोने हैं, ईशान कोण वगैरह वगैरह, तो आठ दिशाएं हो गई। आठ ही दुनिया में धर्मखंड फैले हुए हैं। उन धर्मखंडों में आखिरी जन्म में गिरने वाले वो आठ ही देवताएं हैं।
नवरात्र के गीत चल रहे
हैं,
माताओं को मंदिर में बिठाती और नौ दिन नवरात्र का उपवास रहती
है,
तो नवरात्र बोलते इसका पीछे क्या सवाल?
अभी तो बताया कृष्ण की आत्मा जो है वो अम्मा का पार्ट बजाती है कि बप्पा का पार्ट बजाती है, और अम्मा जो है वो कृष्ण पक्ष में अपना खास पार्ट बजाएगी या सूर्य पक्ष में पार्ट बजाएगी? है कृष्ण पक्ष में भी पार्ट बजाएगी। तो जो भी माताएं हैं वो माताएं कलयुग में पूजी जाती हैं देवियों के रूप में, और सिंगल देवियों के रूप में पूजी जाती है। लक्ष्मी नारायण के रूप में डबल उनकी पूजा नहीं होती है। ये प्रवृत्ति मार्ग की बरखिलाफी है या प्रवृत्ति मार्ग को सहयोग है? बरखिलाफी है। रावण राज्य है निवृत्ति मार्ग, इसलिए देवियों के पुजारी बोले हैं मुरली में रावण संप्रदाय है।